मेरे जीवन में कबीर जो है वो किताबों से आया, और जब हम पढ़ते थे और कबीर के हमने केवल उसमें साखियाँ पढ़ी थी, और वो साखियाँ इसलिए पढ़ी कि परीक्षा में 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। जबकि कबीर से वाकई जो एक परिचय है वो मेरे जीवन में 79-79 में हुआ, जब मैंने ये तंबूर पहली बार देखा। मेरे जीवन में 79 में मैंने पहली बार ये तंबूर देखा, और जो जिस गांव में वो गा रहे थे पूर्णिमा की रात को, वहाँ पर जाने के बाद में तब हमें मालूम पड़ा कि इस साज का नाम तंबूर है और ये लोग इसके ऊपर गाते हैं। जब तक हमें इसका नाम भी याद नहीं था, उस दिन उन लोगों ने बहुत सारे भजन गाए, और वो गांव में गाने वाले लोग थे, लोक परंपरा से जो गाते चले आ रहे थे ऐसे लोग थे। उन्होंने विशेष रूप से उस दिन जो भजन गाए थे उसमें मेरा शब्द आया था, कबीर का भी शब्द आया, रामदेव जी का भी शब्द आया। तब हमें मालूम पड़ा कि भजन में कबीर के भजन भी हैं, क्योंकि हमने केवल कबीर की साखी पढ़ी थी।
आप लोक शैली में गाते हैं, कबीर को क्लासिकल संगीत में भी गाया गया है, इन दोनों में क्या अंतर, और क्या आपने संगीत की कोई शिक्षा ली है? आपके संगीत में कई शब्द मालवीय भी हैं।
क्लासिकल तो मेरा जहाँ तक ख्याल है बाद में बना होगा, क्योंकि शुरू में जिन्होंने भी गाना शुरू किया होगा उसको उस समय पर ये थोड़ी मालूम होगा कि ये क्लासिकल है या नहीं है। वो तो उसके अंतर से जो निकला उसने गाया, तो उसी तरह से लोक परंपरा में जो लोक शैली है वो तो चली आ रही है, लोक परंपरा से लोग गाते हैं, तो हमने भी उन्हीं से सीखा और उन्हीं से इन शब्दों को लेकर के फिर अपने तौर तरीके से गाने का प्रयास किया। जैसे घणो रिजायो, घणो यानी बहुत, उसको इस तरह से गाते हैं, ए जी घणो रिजायो रोयल बावरिन घणो रिजायो री, अरे यो बर पायो वो दीवानी ने यो बर पायो री, मारे सुरस सुवागण नवल बनी सायो बर पायो री। तो अब जैसे इसमें घणो यानी बहुत खूब, उसको मालवा में घणो कहते हैं।
आप इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन मैंने सुना कि आप नौकरी भी करते हैं, और ये तंबूर से जो आपका लगाव है वो बड़ा लेजेंडरी, तो उसके बारे में कुछ बताएं।
मैं तो शिक्षक हूँ और अभी भी हूँ, अभी मुझे 1 साल और बचा है रिटायर्ड होने में। 75 में मेरी नियुक्ति हुई थी ग्राम काठबड़ोदा के मिडिल स्कूल में। 79 में जब मैंने तंबूर देखा और इसको सीखने का जब इच्छा हुई, तो मुझे उस दिन पहली बार उन्होंने कहा कि साहब यदि तंबूर सीखना चाहते हो तो इसके साथ गाना भी शुरू करो, क्योंकि गाओगे तो तंबूर जल्दी बजाना सीख जाओगे। मैं इसको सुनाता हूँ, देखो। अरे खेती करे तो थाने समझ बताऊं रे, बलद्यान दुख मत दीजे, अरे ओछी संगत ना हर भुकतावे, ओछी संगत हर जी भुकतावे, घरे बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। और वो अंतरा जिसकी वजह से मेरा झुकाव हुआ वो ये है, अरे रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावणो, सिर साट मत लीजे, ओ सर खेत बीज मत बोजे, ओ सर खेत बीज मत बोजे, घरे बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। मैंने तो सीखने के लिए, तंबूर सीखने के लिए इसको लिखवाया, पर एक दिन जब गांव में हम दिशा जंगल के लिए गए, जब मैं बैठा था और संयोग से एक पक्षी आता है और एक झाड़ के ऊपर बैठा, और झाड़ के ऊपर बैठ करके जैसे जैसे उसने उसकी चोंच मारी कि वो फूल टूट करके नीचे गिर गया। और जब मैंने देखा कि पक्षी इस फूल की सुंदरता को देख करके इसके ऊपर मोहित होकर के जब आया और इसने चोंच मारी और फूल टूट करके नीचे गिर गया, और चूंकि मैं तंबूर सीख रहा था इस वजह से मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी, वो सेमल, उसको गांव में सेमल भी कहते हैं, रूड़ा भी कहते हैं, तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि कबीर ने गाने की कही कि इसको देख करके कही कि रूड़ा को फूल, यानी उस फूल की को को उसको अच्छा लगा और वो उसको हासिल करने का आया, और उसने जैसे चोंच मारी कि वो टूट करके तुरंत नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं आया। और उसके अनुरूप दूसरी लाइन ये थी कि अवसर खेत बीज मत भोजे, यानी बंजर भूमि में तू बीज मत बोना अन्यथा कुछ नहीं होगा। तब मैंने सोचा कि कबीर केवल गाना नहीं है, कबीर तो प्रकृति में भी घटित हो रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी है।
आपने कई शहरों में परफॉर्म किया है और विदेशों में भी आपका गायन काफ़ी मकबूल हुआ है, जो विदेशों का दौरा था वो कैसा रहा आपके लिए?
विदेश जाने तक का तो ये रहा कि डॉक्टर लिंडा करके हैं जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाती हैं इंडियन रिलीजियस, तो उनका शायद यहीं पर दिल्ली में कहीं उनकी चर्चा अशोक वाजपेयी जी से हुई। उन्होंने जगह जगह पर हमारे साथ जा जा करके उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया, सुना, देखा, लोगों से बातचीत करी, तो इस तरह से उन्होंने शायद इस तरह से किया। और फिर बाद में जब उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटी को सबमिट किया तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम तो अपने यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। फिर उसके बाद में 2003 में उन्होंने ICCR को लिखा और 2003 में ICCR ने स्पॉन्सर किया।
अमेरिका में तो आपने कई जगहों पर गाया था और कई कार्यक्रम हुए थे शायद, नहीं?
हाँ, हम 2003 में जब गए थे तो हमने 20 यूनिवर्सिटियों में गाया और कुल 35 कार्यक्रम हुए थे और अलग अलग 13 स्टेट में वो हुए। हमारे लिए तो पहली बार था क्योंकि अपने भारत की स्थिति को और वहाँ जा कर के देखा तो बिल्कुल अलग लगा हमें। और वो अलग इस तरह से लगा कि हमें वहाँ जाने के बाद भी एहसास हुआ कि लिंडा जी वहाँ पर अपने यहाँ पर ऐसे में कैसे रह गई, जबकि वहाँ पर उनका रहन सहन और उनका इस तरह का था। चूँकि हमने जो गाया वो अपना मालवी लोक शैली में और इस तरह का था, हिंदी में एक तरह से, और वहाँ तो हिंदी आती ही नहीं है। और जो अपने भारतीय लोग वहाँ पर हैं उनके भी वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी आती है, लड़के लड़कियों को तो आती ही नहीं है। फिर भी अप्रवासी भारतीय जो थे, विदेशी लोग जिन्होंने सुना, वो ये कहते थे कार्यक्रम के बाद में कि अमेरिका के 200 साल के इतिहास में हमने आज तक ऐसा नहीं सुना। और कबीर आपने क्या गाया, चाहे शब्द हमें समझ में नहीं आए पर हमें अंतर से कुछ हुआ, ये उनके उनके भाव थे, ये उनकी अभिव्यक्ति थी।
कोई ऐसा गीत था जो लोग बार बार सुनना चाहते हैं या अब भी लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाला गाना आप गा दें?
हाँ, वो गाड़ी का विशेष रूप से सुना उन्होंने, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो गाड़ी का जो पद है पता नहीं क्या लोगों को टच करता है, ये तो वही जाने, परंतु वो हर जगह पर अब हम जान करके उसको नहीं गाते, परंतु कहीं ना कहीं कोई कहता है कि साहब वो भी सुना दो या वो रंग महल सुना दो, तो मैं सुनाता हूँ गाड़ी। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, ये जी गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, ये जी हाकन वाली चेल सबिली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी।